الْمُعْتَرِفِ بِرُبُوبِيَّتِهِ سَائِرُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا ومولانا ابو القاسم محمد صلى الله عليه بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور صلوات عزیزان محترم، اس آئے مبارکہ کے ذیل میں ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اس آئے مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی عزت چاہتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جمیع جتنی بھی قسم کی عزتیں تم سوچ سکتے ہو وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں. عزت کے معنی میں آپ کو بتلا چکا. مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں ایک نام عزیز بھی ہے. سورہ جمعہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ وہ اللہ ہے جو قدوس بھی ہے، ملک بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی جتنی بھی اس کائنات کی توانائیاں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی استقامت ہے اور جتنا صبر ہے، ان سب کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. ہے نا یہ بات؟ اس پہ تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. تو اب یہیں سے آگے بڑھ جاؤ کہ اگر عزتوں کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو وہی صاحب عزت ہوگا جو اللہ سے قریب ہو جائے. صاحب عزت فقط اور فقط وہی ہوگا جو اللہ سے قریب ہو جائے. جتنا قریب اتنا صاحب عزت. اب اسے الٹ دو، جتنا دور اتنا بڑا ذلیل. تو اب ذرا میرے ساتھ چلتے رہنا، اور یہ ایک مسلسل خط فکر ہے، یعنی تین گھنٹوں پر مشتمل یہ جو سلسلہ ہے نا. ہم کسی مسلسل بات کو اپنے محترم سامعین تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو اب یہاں سے ایک عجیب بات نکلتی ہے، عزت اللہ کی، سارے خزانے اللہ کے پاس. بہت توجہ رکھنا، جو جتنا قریب ہوگا اللہ سے وہ صاحب عزت ہوگا، جتنا دور ہوگا वो जलील होगा। अब एक मसला इसी इज्जत से निकलता है, और चूंकि बहुत पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाएं इसलिए ये जुमला अर्ज कर रहा हूं मैं। भाई देखो, इज्जत को बहुत तवज्जो रखना, इसलिए जो जुमला कहने वाला हूं मैं वो बहुत बारीक है। इज्जत को इज्जत मान लेना उसका एहतराम है। इज्जत को यानी किसी की इज्जत को तस्लीम कर लेना, इसका नाम है एहतराम। बात वादे हो रही है? यानी एक चीज इज्जत रखती है, उसकी इज्जत को मैं तस्लीम कर रहा हूं, मैं उसका एहतराम कर रहा हूं। भाई एक मिसाल है अरबी जबान में, अकरमिल उलमा, उलमा का एहतराम करो, ठीक है ना। भाई उलमा का एहतराम क्यों करो? इसलिए उलमा में इल्म पाया जाता है, और इल्म है इज्जत की चीज, तो जहां इज्जत की चीज हो जाए वहां एहतराम लाजिमी होगा। एहतराम समझ में आ गया? भाई बहुत बहुत तवज्जो है। इज्जत और इज्जत को तस्लीम करना उसका नाम है एहतराम। अजीब बात यह है कि परवरदिगार ने आवाज दी, तहेरा बैती लिताइफीना वल आकिफीना व रुक का सुजूद। इब्राहिम और इस्माइल तस्निया के सिवा है, ऐ इब्राहिम और ऐ इस्माइल तहेरा बैती मेरे घर को पाक करो। बतवाजो रखना, कहने लगे अहले बैत नजीस होंगे तो पाक किए गए होंगे, तथीफ, ठीक है। अब यहां तर्जमा करो कि पाक करो, तो अब तर्जमा क्या होगा? पाक रखो। भाई एक एक लफ्ज उसी के बराबर में है तकबीर। अल्लाह को बड़ा बनाओ, बड़ा है उसकी बड़ाई का ऐलान करो। तो अगर तकबीर के मानी है वो बड़ा है उसकी बड़ाई का ऐलान करो, तो तथहीर के मानी है वो पाकीजा है उसकी पाकीजगी का ऐलान करो। तहेरा बैती ऐ इब्राहिम और ऐ इस्माइल, मेरे इस घर को तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। यह है मकाम एहतराम। पाक बनाए गए हैं, पाक नबियों ने उस घर को बनाया है, वो जो दरो दीवार है ना वो पाक बनाए गए हैं। खाने काबा की चार दीवारी पाक है, इसलिए पाक नबियों ने बनाया, और अब बकाए तहारत का हुक्म है, इन्हें पाक रखो। और अब इतना पाक रखो कि हालत नजासत में उस घर से गुजर भी नहीं सकते। भाई आराम आराम से सुनो, इसलिए कि जाना बहुत दूर है। हालत नजासत में गुजर नहीं सकते, खुदा की कसम गुजर नहीं सकते। बहुत बहुत तवज्जो है। अच्छा भाई, तो वो तो है अल्लाह का घर और बनाया है दो नबियों ने, अब हमने जो मस्जिदें बनाई उनके लिए हुक्म ये कि नजासत में गुजर सकते हो, क्याम नहीं कर सकते। भाई हमने बनाई मस्जिद, हमने बनाई, तहारत का ऐलान परवरदिगार ने किया, और फिक्ह इस्लामी ने इस बात को दोहराया कि देखो भाई अगर तुमने मस्जिद बना दी तो अब उसमें नजासत में क्याम नहीं कर सकते, गुजर जाओ तो गुजर जाओ। भाई बहुत तवज्जो रखना, तो मस्जिदें तो कुल दो हैं, ये आपने गली गली मस्जिद कैसे बना दी? एक मस्जिदुल हराम है खाने काबा, एक मदीने में मस्जिद नबवी है। भाई तवज्जो रखना, भाई मस्जिदें तो कुल दो हैं, ये तुमने गली गली में मस्जिदें कहां से बना दी? तो मुल्ला कहने लगा कि भाई हमने मस्जिद तो वो दो ही है, हमने तो मस्जिद की छवि बनाई है। हमने मस्जिद की छवि बनाई है, तो आप छवि बनाए मुस्तैब हो जाए, हम छवि बनाए तो बिदअत करार पाए। भैया मैंने अर्ज किया ना कि मुसलसल खत फिक्र है, तो अब तीसरा अर्ज दे रहा हूं मैं भाई, इज्जत इज्जत को इज्जत मानो, एहतराम और एहतराम निस्बत का। भाई रमजान का एहतराम क्यों, शहरुल्लाह है ना। अजी कुरान का एहतराम क्यों, कलाम इलाही है, कलामुल्लाह है भाई, ऐसा ही है ना। तो तुमने मुझे माफ कर देना, तुमने कुरान के एहतराम में कभी कुरान के जुज़दान को चूमा, और अगर बावजू हो तो बड़ा खोल के कुरान के लफ्ज को चूम लिया, हकीकत है कुरान को नहीं चूमा। ये जो कुरान मजीद तुम्हारे और हमारे हाथों में है, ये हकीकत कुरान नहीं है, और तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा। लव अंजलना लव अंजलना हादल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशन वतसद्दन मिन खशयतिल्लाह, पहाड़ टूट जाए इस कुरान से। भाई तुम्हारे घर में जो कुरान है उसे पहाड़ पर रख के देख लो। तो कुरान और है, हकीकत कुरान और है। अब एक आम सी मिसाल, मुझे जाना बहुत दूर है और जहां जाना चाह रहा हूं वहां के लिए ये मराहिल जरूरी हैं। एक आम सी मिसाल भाई, देखो भाई जब सड़क पे जाओगे तो बिजली की जो तार हैं वो बरहना होंगे, तार बरहना है, ठीक है ना। अच्छा भाई अब घर में ये इतने सारे तार देख रहे हो, ये प्लास्टिक कोटेड हैं, इन्हें लिबास पहना दिया गया है। तो एक तार है जो बरहना है, एक तार है जिसने लिबास पहन लिया, तो भाई वो बरहना तार इस घर में क्यों नहीं है। अगर करंट लग जाए तो इंसान हलाक हो जाए, तो हलाकत से बचाने के लिए लिबास पहना दिया। इल्म-ए-इलाही नूर था, जब कुरान बनाया तो लफ्जों का लिबास पहनाया, और जब इंसान बनाया तो मोहम्मद को तवज्जुहात मबदूल है, मोहम्मद को बशरी लिबास में भेजा ताकि तुम करंट से बच जाओ। यानी हकीकत एक है, किताब बने तो कुरान कहलाए, इंसान बने तो मोहम्मद कहलाए। भाई यहां तक तो आ गए हो ना मेरे साथ, मैं बहुत तरतीब से आगे बढ़ रहा हूं और कहीं ले जाना है, यानी मुझे लफ्जों के इंतखाब में कंफ्यूजन हो रहा है, बात तो मेरे जहन के अंदर है। अच्छा भाई यहां तक आ गए ना, तो सारा एहतराम निस्बत से, इज्जत अल्लाह के पास, अल्लाह जिसे इज्जत दे दे उसका एहतराम करो, और एहतराम होगा निस्बत से। यहां तक आ गए, शहरुल्लाह अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना निस्बत है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, सफा मरवा हजर असवद शायरुल्लाह, तवज्जो रखना। तो अब हमने मुल्ला से पूछा कि भाई ये कुरान होगा, इल्म-ए-इलाही है, इल्म-ए-इलाही है, कुरान तो गैरुल्लाह है ना, अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, कहाँ गैरुल्लाह है। हमने कहा सफा और मरवा क्या अल्लाह है, कहा नहीं गैरुल्लाह है। ये हजर असवद जिसे हम चूम रहे हैं और इशारे से चूम रहे हैं, तो क्या ये अल्लाह है, कहा नहीं गैरुल्लाह है। अच्छा भाई तो गैरुल्लाह का एहतराम तो शिर्क है ना, कि नहीं जो चीज अल्लाह से मंसूब हो जाए उसकी इबादत नहीं है, उसका एहतराम है। तो अब इस अंधे मुल्ला को मैं क्या कहूं कि शहरुल्लाह समझ में आ गया, यदुल्लाह और अनुल्लाह आज तक समझ में ना आया। सब समझ। अब देखेंगे इस नारे ने इंस्पायर किया, देखेंगे मौलायत को भी देखेंगे, लेकिन अभी एहतराम तो समझ में आ जाए। अच्छा तो मैंने दो ही लफ्ज इस्तेमाल किए अपने अली के लिए, दो लफ्ज इस्तेमाल किए, आयनुल्लाह अल्लाह की आंख, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ। भाई बहुत तवज्जो रखना, मैंने कभी एक वाकया बयान किया था, हवाला भी सुनते जाओ। इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली ने अपनी किताब शहर नहजुल बलागा में इस वाक्य को लिखा है और मैंने अपनी आंख से देखा है और आंख से देख के पढ़ रहा हूं मैं। हज का मौसम था और तुम्हें ये मालूम होगा कि हज के मौसम में पैगंबर अकरम की एक सीरत थी कि वो अमीरुल हज बना के भेजा करते थे। जब पैगंबर अकरम इस दुनिया से गए तो जो खुलफाए राशिदीन तशरीफ लाए वो जब होते थे तो वही अमीरुल हज होते थे। ठीक, हजरत फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो वो तशरीफ ले गए थे हज के लिए और अमीरुल हज थे जाहिर है। इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक मेरे फिरके से, मेरे मतलब से नहीं है। उन्होंने एक जुमला लिखा है और वो आपके खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूँ मैं। हवाला इसलिए तफसील से दे दिया कि जो लोग अरबी जबान के शायख हैं वो देख सकते हैं इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली की शरह नहजुल बलागा में। हजरत फारूक तशरीफ फरमा थे अपने उस मुस्तकर पर जहां क्याम था। एक शख्स सामने से गुजरा और उसके चेहरे पर, रुखसारे पर जख्म का निशान था, यानी इतनी ताकत से तमाचा मारा गया था कि जख्म बन गया था उसके चेहरे पर। उनका इधर आओ, वो आया, पूछा कि बात क्या है। अली ने तमाचा मार दिया, अली ने तमाचा मार दिया। अब देखो अब यह है कि फरमा रहे हैं यदुल्लाह ही तमाचा है तो ऐसा ही, ये वही तमाचा है जो अली ने 3 दिन की उम्र में अबू जहल को मारा था। ताकत उस वक्त चूंकि छोटा हाथ था इसलिए ताकत कम रही हो, और अब हाथ बड़ा हो गया था ताकत ज्यादा हो, नहीं छोटे बड़े की तमीज नहीं होती। आले मोहम्मद में छोटे बड़े की तमीज नहीं होती। और मेरे पास दलील है, सूरह बकर कुरान का सबसे बड़ा सूरह, सूरह कौसर कुरान का सबसे छोटा सूरह। क्या वो मौजज़ा है, ये मौजज़ा नहीं है? बड़ा अजीब और गरीब वाकया है और इस वाकये को सुनाकर मैं कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा, तो अब अली को जहमत दी जाए कि क्यों तमाचा मार दिया। बुलाए अली को, अली को बुलाए, मुमकिन नहीं है। अली के पास तो लोग जाते हैं ना, कहा या अली, तशरीफ ले जाकर कहा कि या अली आपने इसे तमाचा मारा। कहा क्या? हाँ, तमाचा मारा। हाँ, तमाचा मारा। कहा कि या अली आप गरज बताएंगे कि क्यों आपने तमाचा मार दिया, सबब। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों की नामूस पे बुरी निगाह डाल रहा था। देख रहे हो, अमीरुल हाज कोई और है, फैसले अली कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा हकानियत क्या चाहते हो? कोई और है अमीरुल हज, फैसले अली कर रहे हैं। या अली क्यों मारा? कहा इसलिए कि ये मुसलमानों की नामूस पे निगाहबंद डाल रहा था। बेबस हो गई शख्सियत, बेबस हो गई। उससे कहने लगे जिसने तमाचा खाया था कि मैं क्या करूं, रआ का ऐनुल्लाह, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मार दिया। अजीब मरहला फिक्र है। मैंने नहीं कहा, न मैंने ऐनुल्लाह कहा, अगरचे हमारा अकीदा भी इससे ज्यादा नहीं है जो बुजुर्ग का था, ठीक है ना, इससे ज्यादा हमारा अकीदा नहीं है। मैंने नहीं कहा ऐनुल्लाह और मैंने नहीं कहा यदुल्लाह। निगाह है बुजुर्गा में, अली है यदुल्लाह। अब कुरान की आयत पढ़ूं, यदुल्लाहे फौका एदीहिम, अल्लाह का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, बैत के लिए नीचे नहीं आ सकता। आए मुबारक है जो मैंने आपके हिजरत से तिलावत की। अच्छा भाई, तो मनकाना, अब आगे आगे जाना है। मनकाना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीया। फिर हम वापस जा रहे हैं उस आए मुबारक की तरफ। जिसे इज्जत चाहिए वो ये जान ले कि इज्जतों के सारे खजाने अल्लाह के पास हैं। ये सूरह फातिर की आयत है, 35वां सूरा। और अब सूरह मुनाफिकून आवाज दी, वलिल्लाहिल इज्जत वले रसूल ही वलिल मोमिनी। इज्जत बस और बस अल्लाह के लिए है, और उससे मिले तो रसूल को मिले, और रसूल से जब चले तो मोमिनीन को मिल जाए। तो साहिबान इज्जत कुल तीन है, अल्लाह, उसका रसूल, 63वां सूरा है, उसकी 8वीं आयत है। अल्लाह साहिब इज्जत, रसूल साहिब इज्जत, और वो लोग जो मोमिनीन हैं वो साहिब इज्जत। बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि शायद फिक्र उमूमी से बात बुलंद हो जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये मुसलसल खत फिक्र मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए, और अगर पहुंच गया मेरी मेहनत स्वागत है। तो इज्जत अल्लाह की, इज्जत रसूल की, इज्जत साहिबान ईमान की। भाई ये कौन है साहिबान ईमान? सूरह मोहम्मद 47वां सूरा कुरान का, 47वां सूरा। अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व आमनू बेमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन। मोमिन फकत वो है जो मोहम्मद पर नाजिल होने वाली हर बात पर ईमान लाए। पढ़ा लिखा मजमा है, पढ़ा लिखा मजमा है, मोहम्मद पर नाजिल होने वाली हर बात पर ईमान लाए। यह नहीं हो सकता कि मोहम्मद पर एक चीज नाजिल हुई उसे मान लिया, और मोहम्मद पर दूसरी चीज नाजिल हुई उसे नहीं माना। जो भी नाजिल हो जाए मोहम्मद पर, बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, जो भी, जो कुछ भी मोहम्मद पर नाजिल हो जाए उस पर ईमान लाने वाला मोमिन है। अब मैं पूछूं कि मौलायत नाजिल हुई थी या नहीं? बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक। बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अब बात यहां से थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अब वो मोमिन कौन है? मोमिन वो जो मोहम्मद की हर बात पे जो नाजिल हुई है उसके ऊपर ईमान लाए। यही सबब है कि कुरान मजीद ने बार बार इत्तेबाए मोहम्मद का हुक्म दिया। सूरह आले इमरान 3रा सूरा, ये हवाले नोट करते जाओ, इन्हें कंपाइल करके देखना, मिला के देखना। 3रा सूरा और 31वीं आयत, कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबेउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रसूल कह दो कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम दावा करते हो अल्लाह से मोहब्बत का तो इत्तेबा मेरा करो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। ये इत्तेबाए मोहम्मद समझ में आ गया? बहुत तवज्जो रखना, इसलिए अब ये कड़ियां मिला रहा हूं मैं आयात की, और ये कड़ियां अगर मिल गई तो फिर यहां से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबेउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, 31वीं आयत है सूरह आले इमरान की। रसूल कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, मोहब्बत रखते भी हो, तो वो मोहब्बत उस वक्त तक नाकाफी है जब तक मेरा इत्तेबा ना करो। तो मोहब्बत अल्लाह की, इत्तेबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का। यहां तक तो आ गए ना? तो इत्तेबाए मोहम्मद लाजिम है। अब तुम्हें पूछने का हक हासिल है कि इत्तेबाए मोहम्मद क्यों लाजिम है? सूरह यूनुस 10वां सूरा, इन अत्तबेओ इल्ला मा यूहा इलैया। तुम मेरा इत्तेबा करो और मैं इत्तेबा करता हूं वही इलाही का। सिलसिला समझ में आ रहा है, इज्जतें अल्लाह से। उसने वही भेजी और उसका इत्तबा किया मोहम्मद ने। अब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इत्तबा करो। यहाँ तक आ गए मेरे साथ, बिल्कुल आ गए। अब सुनना भाई, और इस आय मुबारक को अपने जहन में महफूज रख लेना। सूरह यूसुफ 12वां सूरह कुरान का और आयत का निशान 108, 12वां सूरह 108वीं आयत। इत्तबा किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ठीक है ना। अब आए सुनो, कुल हाज़े सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। रसूल कह दो कि यह दीन पूरा मेरा रास्ता है, मैं कदम रखता जाऊं दीन बनता जाए। ये आय मुबारक है। कुल हाज़े सबीली, कह दो कि यह दीन, कुल अल्लाह ने हुक्म दिया, कह दो कि यह दीन मेरा रास्ता है, मैं कदम रखता जाऊं रास्ता बन जाए। अदू इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। अला बसीरतिन, पूरी तरह सोच समझ कर, पूरी बसीरत के साथ। बहुत तवज्जो रहे, आना व मन इत्तबानी। कुल दो आदमियों को हिदायत का हक है, या मैं करूं या वो करे जो मेरा इत्तबा करता है। आयतें जहन में महफूज होती जा रही हैं। तो किसको हक है हिदायत करने का? या रसूल करे या वो करे जो रसूल का मुकम्मल इत्तबा करता हो। यहां तक आ गए तुम? देखो कोई रिवायत बीच में है नहीं, है ना। यही तो मैं कहता हूं कि वाकई बुजुर्गों ने सच कहा था कि किताब काफी है, और किताब वाकई काफी है। भाई ये जुमला जो है ना, मैं इसकी बड़ी कदर करता हूं, किताब वाकई काफी है। यानी अगर आपने मुझसे, मैं आपके घर गया मिलने के लिए, आपने मुझसे चाय पूछी, मैंने कहा हम पी लूंगा, एक प्याली चाय मैंने आपसे पी ली। बहुत तवज्जो रखिएगा। आपने कहा भाई दूसरी प्याली आप पियेंगे, मैंने कहा नहीं वो काफी है। तो चाय काफी है, ठीक है ना। एक चीज का काफी होना दलील नहीं है कि दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। तो खाना तो खाऊंगा, पानी पीऊंगा। तो किताबों में किताब काफी है, लेकिन शारे के बगैर काफी नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? मैं कहीं जा रहा हूं और मेरे साथ चलते रहना और बहुत आराम से सुनना। अच्छा भाई, तो किताब तो काफी है, अगर काफी है तो आयतों से जोड़ो और नतीजा खुद निकालो। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। आयात को सिक्वेंस दे दूं, सूरह यूनुस इन अत्तबे ओ इल्ला मायूहा इलैया। मैं रसूल कहते हैं कि पैरवी करता हूं वही इलाही की, एक आयत। सूरह आले इमरान कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरा इत्तबा करो, मैं करता हूं वही इलाही का इत्तबा, तुम मेरा इत्तबा करो। दो हो गई ना। और अब आवाज दी कि कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। अब इस दीन की हिदायत सिर्फ दो करेंगे, या मैं करूंगा या मेरा इत्तबा करने वाला करेगा। रब रब बरकरार है ना। अच्छा तो अब सुनना कि वो जो इत्तबा करेगा वो बाबे रसूल जानशीन होगा। अब कहां तलाश करें उस इत्तबा करने वाले को? तो सूरह शौरा 26वां सूरह और 215वीं आयत। वह अंजिर अशीरतक अकरबीन वग़फिर जनाहका लिमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन। हबीब, मोमिनीन में से जो तेरी मुकम्मल पैरवी करे उसके लिए कंधे को झुका दे। मोमिनीन में से जो तेरी मुकम्मल पैरवी करे उसके लिए कंधे को झुका दो। तो अब सीक्वेंस दिमाग में महफूज हुआ या नहीं कि जो मुकम्मल पैरवी करे वही बाद रसूल खलीफा है, वही बाद रसूल जानशीन है। और मुकम्मल पैरवी करने वाला कहां मिलेगा? जहां रसूल का कंधा झुक जाए, आंख आंखें पथरा गईं, नहीं मिला। मगर कुल दो मौकों पर, जब फतेह मक्का के दिन अली को उठा रहे थे तो कंधा झुकाया, जब हसनैन के लिए नाका बन रहे थे जब कंधा झुकाया। इत्तेबाए, इत्तेबाए रसूल बुनियाद है। रसूल को जांचो, उसका इम्तिहान लो, उसे परखो, उसे समझो, उसे जानो, उसे बूझो। लेकिन जब जान लिया और बूझ लिया तो अब इत्तेबा करना होगा भाई। यही सबब है कि कहने लगे तुमने हमजा का कलेजा चबाया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसलिए कि तुम इस्लाम में आ रहे हो। तुमने मुझे मजनून कहा, साहिर कहा, शायर कहा, तुम्हें छोड़ दूंगा इसलिए कि तुम इस्लाम में आ रहे हो। और जब इस्लाम में आने के बाद मेरे इत्तेबा का इकरार कर लिया तो अब नहीं छोड़ूंगा। अब अगर तुमने इत्तेबा नहीं किया तो रजीम बनाकर घर से निकाल दूंगा। समझ रहे हो ना बात को भाई? यही सबब है। रुको भाई, कभी कभी तो जी जाता है। और आज जरा सतह उमूमी से मैंने बात बुलंद कर दी है, लेकिन अब मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। यही सबब है कि वो हुक्म तहवील क़िबला का, जानते हो तहवील क़िबला? जिन लोगों ने हज किया है वो जानते हैं, और जिन्होंने हज नहीं किया अल्लाह उन्हें हज करने की तौफीक अता करेगा। मस्जिद ज़ुल्क़िबलतैन मौजूद है, जानते हो ज़ुल्क़िबलतैन क्या है? पैगंबर अकरम हिजरत करने के बाद नमाज पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस की जाने पर, महीनों पढ़ो, महीनों नमाज बैतुल मुक़द्दस की जाने पढ़ते रहे। एक दिन पैगंबर अकरम पर ये वही नाज़िल हुई कि अब तुम अपना क़िबला बदल दो। सयकूलु सुफ़हा मिनन नास, और रसूल ने क़िबला बदल दिया। अभी बताऊंगा किस सिचुएशन में रसूल ने क़िबला बदला। सयकूलु सुफ़हा, दूसरा पारा इसी आय मुबारक से शुरू होता है। सयकूलु सुफ़हा मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अन करीब लोग एतराज़ करेंगे, अच्छे खासे बैतुल मुक़द्दस की तरफ सजदा कर रहे थे, ये बदल क्यों गए? अब दरमियान से एक आयत छोड़ रहा हूँ। मा जअलना क़िबलतल्लती कुंत अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैह। भाई हम तो ये इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुमने फ़कत रसूल से नमाज सीखी है या इत्तेबा भी सीखा है। कभी कभी उस तरीके से बोलता हूँ जैसे आज बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, आप जानते हो अगर तुम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो काबा पुश्त पे होगा, अगर काबे की तरफ मुंह करो बैतुल मुकद्दस पुश्त पे होगा, यानी बीच में है मदीना, उधर मुंह करो काबा पीछे, काबे की तरफ मुंह करो बैतुल मुकद्दस पीछे। सिचुएशन समझ में आ गई? आज भी जाकर देख लेना ज्योग्राफी की किताब में, शिमाल और जुनूब का फर्क है, एक एक शिमाल में है एक जुनूब में है। हिजरत का दूसरा साल था, जोहर की नमाज थी, जोहर की नमाज में पैगंबर दो रकतें पढ़ चुके हैं, तीसरी रकत के रुकू में आए हैं और वहां हुक्म नाजिल हो गया फलान्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा कद नरा तकल्लुबा वजहका फिस समाए। हबीब, हम बार बार ये देख रहे थे कि तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा क़िबला बदल दिया जाए। फला नोवलियन का क़िबला तन तर्ज़ाहा, तो अब हम ऐसे क़िबले की तरफ तुम्हें मोड़ रहे हैं जिससे तुम राजी हो, क़िबला अल्लाह का, रज़ा मोहम्मद की। क़िबला अल्लाह का, रज़ा मेरे नबी की, ठीक है ना, फला नुवल्ली अन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, जिस क़िबले से तुम राजी हो हम तुम्हें उसकी तरफ फेर रहे हैं। अच्छा भाई, तो अब दो रकातें हो चुकी हैं, बहुत तवज्जो रखना, दो रकातें हो चुकी हैं जोहर की। पैगंबर अकरम तीसरी रकात में है जोहर की, और रुकू में वैसे में हुक्म आया। क्या ये दो मिनट पहले नहीं आ सकता था? यही देखना था कि नमाज सीख लिया या इत्तबाए रसूल सीख लिया। दो मिनट, या तो दो मिनट बाद आता या दो मिनट पहले। रुकू में पैगंबर रुकू में है, और रुकू के आलम में पैगंबर ने हरकत करनी शुरू की, मुड़ना शुरू किया। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो ना, ऐसी दखीक बातें मैं मिंबर से बयान नहीं किया करता, लेकिन एक बात सुनो, लोग जो हैं पीछे हैं ना रसूल के, रसूल का मुंह है बैतुल मुकद्दस की तरफ, ठीक। जब रसूल मुड़ के काबे की तरफ जाएंगे तो लोग सामने आ जाएंगे, यही तो होगा ना। तो रसूल को हुक्म आया और रसूल मुड़ते चले गए, मुसलमान और रसूल आमने सामने हो गए। अजीब कैफियत हो गई, सब घबरा के खड़े हो गए, ये हुआ क्या? एक था, जैसे रसूल मुड़ते गए वैसे वो मुड़ता गया। अजीब है, एक था कि जैसे जैसे रसूल मुड़ते गए वैसे वैसे वो मुड़ता गया। परवरदिगार, ये रुकू में हुक्म क्यों आया, या पहले आता या बाद में आता? कहा मैं जान रहा हूं कि मुसलमानों का मुल्ला अली के रुकू पे एतराज करेगा। भाई बहुत तवज्जो रहे, अब तो आया हूँ मैं फजाइल अली की तरफ, लेकिन अभी अभी मुकम्मल नहीं आया। अब तुमसे पूछना चाहता हूँ, कह रहे थे ना कि अली ने अंगूठी दे दी थी रुकू में, तो नमाज के खुजू और खुशू में फर्क पड़ गया। और अली तो अल्लाह की बारगाह में होते थे, ये अली ने सुन कैसे लिया? शायर की आवाज़ कैसे सुन ली, कहते हैं ना। अच्छा अभी तो शायर कह के आ रहा था, कभी तारीख में देखा? कह रहा था, परवरदगार तेरे रसूल की मस्जिद में मुझे कुछ नहीं मिला। किसे कह रहा था? अल्लाह से आवाज पहुंची अल्लाह की बारगाह में। अली कहां था? पर अली पर सोच समझ के एतराज किया करो। ये जुमला तुमसे नहीं कह रहा हूँ, वो बड़े बड़े उलमा उनसे कह रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अब आप नमाज में गए, मस्जिद में वुजू किया, आपने उल्टा सीधा जैसा समझ में आया, वुजू किया। अब वुजू करने में आप इतने इतना खुजू और खुशू भरता के नमाज आगे बढ़ चुकी है, वो रुकेगा तो नहीं आपके लिए। भाई पेश नमाज है ना, वो सूरज पटाके तो पड़ता नहीं है, वो तो नमाज पढ़ रहा है और नमाज आगे जा रही है। अब आप गए और आपने या अल्लाह कहा, वुजू किया, वुजू करने के बाद पहुंचे, अब कहाँ से जोड़ेंगे?
रुकू से।
अब पेश नमाज है रुकू में और आप कह रहे हैं या अल्लाह, सुन रहा है या नहीं सुन रहा है?
वाह वाह।
तो ये अजीब सजा परवरदगार ने मुअय्यन की कि तुमने अली के रुकू पे एतराज़ किया था, क़यामत तक या अल्लाह सुनते रहो। ये अजीब 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 मरहला फिक्र है। अच्छा भाई, तो अब एक था जो मुड़ता हुआ चला और रसूल जब मुकम्मल खाने काबा की तरफ आ गए तो वो भी मुकम्मल खाने काबा की तरफ था। अली ने मुनाशदा की रिवायत में जो मकाम फख्र में चंद जुमले कहे हैं उनमें एक जुमला कहा है, अनल मुसल्ली इल्ल क़िबलत है, अकेला मैं हूँ जिसने एक नमाज दो किबलों की तरफ पढ़ी, जगह सबकी टूट गई थी, सबकी नमाजें इस जगह आमने सामने आ गए ना, अब नमाजें कैसे बाकी रहेंगी? लोग घबराए हुए थे, सफों में इंतजार फैल गया। तो अब एक एक इंसान है और तारीख फजाइल में खुदा की कसम अली का मसील इस मामले में कोई नहीं है। या रसूल ने पढ़ी एक ही नमाज दो किबलों की तरफ, या अली ने पढ़ी? अच्छा भाई, अली तो रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे ना, मुझे माफ कर देना, मैं गुलू का आदि नहीं हूं, गुलू से मुराद हद से बढ़ा देना, लेकिन जो बात सामने की हो मैं क्या करूं। कभी मैंने कहा था जब मेरी नौजवानी थी ना, तो मैं लाहौर में एक मजलिस पढ़ रहा था, मजलिस के बाद एक बुजुर्ग ने मुझे मशवरा दिया, नसीहत फरमाई कि हद से न बढ़ाया करें। तो उस वक्त मैंने कहा था 40 साल पहले कि हद मुअय्यन करने बढ़ाऊंगा नहीं, नमाज में है भाई तवज्जो रहे, और नमाज में अगर खड़े हुए हो तवज्जो रहे तो निगाह या सजदगाह की तरफ हो मुसाहिब है और या आसमान की तरफ हो, और अगर रुकू में हो तो दोनों कदमों के दरमियान देखो। तो अली ने मुड़ते हुए तो नहीं देखा, दोनों कदमों के दरमियान देख रहे हैं, तो कैसे पता चला कि रसूल मुड़ रहे हैं? खुदा की कसम जो आवाज है वही मोहम्मद ने सुनी, वही आवाज मेरे पास। अब अली तक तो आ गए, और याद रखोगे ना कि ये वो वाहिद फजीलत है जो रसूल के बाद अली को मिली और पूरे आलम इस्लाम में किसी को नहीं मिली। और अब आयतें नहीं पढ़ूंगा, किबले की तहवील की थोड़ी थोड़ी सी आयतें मैंने पढ़ दी। अब जानते हो फिनिश कहां किया परवरदगार ने? वले उतिम्मा नेमती अलैकुम। अब हम काबे को किबला बना रहे हैं, यह तुम्हारे लिए इतमाम नेमत है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अब कुछ समझ में आया, यानी काबा किबला बने जब इत्माम नेमत, मौलूद काबा मौला बने जब इत्माम
नेमत।
अजीब बना लगे। अच्छा भाई, तो अब जरा सा एजेंडा बदल रहा हूं मैं। अब मौलाइयत से मुझे बोलना नहीं था, लेकिन एक बुजुर्ग ने नारा लगाया तो मैंने कहा भाई एक जुमला तो मैं कही जाऊं ना, और मुझी से सुनोगे ये जुमला। गदीर बिल्कुल नहीं बयान करूंगा, सिर्फ लफ्ज मौला, सिर्फ लफ्ज मौला वादे करना चाह रहा हूं तुम्हारे सामने। कुछ याद है जब मजमे को जमा किया पैगंबर ने, तो मजमे को जमा करने के बाद फरमाने लगे अलस्तो औला बेकुम मिन अनफुसेकुम। मुसलमानों, बहुत बड़ा मजमा था, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोग तशी फरमाए, क्या अपनी मौलाइयत का सवाल कर रहे थे? खुदा की कसम नहीं, ये अपनी मौलाइयत का सवाल नहीं था, इसलिए कि कुरान पहले कह चुका था अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसहिम, नबी तो मोमिनीन का मौला है। तो जब कुरान में आ गया था तो फिर पूछना क्या, कि क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? तो ये नहीं पूछा था। अब तुम सोच रहे हो ना, अब तुम सोचोगे फिर क्या पूछा था, भाई मैं तो हूं मौला और आयत आ चुकी है कि मैं मोमिनीन का मौला हूं, तो मैं तो मौला हूं, तुम मोमिन हो भी या नहीं? मैं तो मौला हूं, तुम मोमिन हो भी या नहीं? सबने कहा कि हाँ हम मोमिन हैं, तो कहा मोमिनीन का मौला अगर मैं हूं तो ये अली है। भाई तवज्जो रे, तो मौला बनाया है मोमिनीन का, अब मुशरकीन को नाराज नहीं होना चाहिए। मौला बनाया है मोमिनीन का, तो मुशरकीन हो काफरीन हो मुनाफिकीन हो, उन्हें नाराज ही नहीं होना चाहिए। कुरान में है वल काफरीन अल्लाह मौला लहुम, काफिरों का मौला नहीं हुआ करता, वो दिन और आज का दिन काफिरों के पास कोई मौला नहीं है। ठीक है ना, अच्छा तो अब जुमला सुनो और मैं आखिरी मरहले से करीब हो जाऊं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सारी तारीखें देख डालना, तफसीरें जितनी मिले सब देख लेना। अकीमुस्सलात, ऐ ईमान लाने वालों नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, हुक्म आया नमाज कायम करो। मजमा जमा करके कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजे को वाजिब किया, मजमा जमा किया था। भाई लोग मिलते गए, कहते गए लिल्लाह अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैह सबीला, हमने हर उस इंसान पर जो मुस्तती हो हज को वाजिब कर दिया, मजमा तो कहीं जमा नहीं किया। लोग मिलते गए, हुक्म आम होता गया। कुल एक हुक्म है जिसके लिए फरमाने लगे आगे जाने वाले वापस आए, पीछे आने वाले सामने आ जाएं, जो हैं वो बैठ जाए। भाई यही हुआ ना, तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो रही है। जब हुक्म आया है कि अली की मौलायत का मोमिनीन में ऐलान कर दो, तो कहने लगे कि जो आगे बढ़ गए हैं उनसे कौ पलटे, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो, जो हैं वो बैठ जाएं, जो आगे बढ़ गए जो पीछे रह गए वो मुस्तकबिल है ये माजी है, जो हैं वो बैठ जाएं ये हाल है। यानी अब ऐसा हुक्म सुनाऊंगा जो किसी एक जमाने के लिए नहीं होगा, माजी हाल मुस्तकबिल तीनों जमानों पे मुहित होगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, 3 सात या 2 सात, अब सात का तर्जमा मेरे पास नहीं है, घंटा तो नहीं कर सकता मैं, पैगंबर अकरम ने अली के फजाइल बयान किए, पालानी शिदर का मेंबर बनवाया, अली को साथ बिठाया और 2 सात या 3 सात अली के फजाइल बयान किए। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर इस आखिरी मरहले पर रुक गई। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो सारे के सारे बैठे हुए सुन रहे हैं, मेरा नबी उन्हें अली के फजाइल सुना रहा है। यही है ना सिचुएशन, सिचुएशन यही है भाई। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। अब एक चीज इत्तेबाए रसूल में हमने ले ली कि मजमा जमा करके फजाइल अली बयान करना सुन्नत रसूल, और मजमे में बैठकर फजाइल अली सुन्नत सीरत सहाबा। अब जो मजलिस में ना आए वो दोनों का दुश्मन है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं ठोक बजा के रवायात पढ़ने का आदमी हूँ। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मेरे नबी ने कहा कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। मजलिस का लफ्ज हमने अपने घर से नहीं इस्तेमाल किया। ज़बान रसूल से मजलिस का लफ्ज निकला तो हमने भी उस मजलिस का इनेकाद किया। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मुझे माफ़ कर देना, कभी कभी तो जी चाहता है कि जुमला कह के मैं आगे गुजर जाऊँ। खुदा की कसम मेरी निगाह में वो मजलिस मनहूस है जिसमें अली और औलाद अली का तज़किरा न हो। कैसा अली, कैसा अली भाई। एक जुमला सुनो और मुझे माफ कर देना, मैं आज माफी कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ। इसलिए कि अली का तस्करा है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को शायद अच्छा न लगे, चेहरे देख लेना। तो अब मैं जुमला कहे बगैर तो नहीं गुजर सकता। ये मुबालगा नहीं है, ये मुबालगा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल कुरान में भूल गए, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। गोद में है मरियम की, मरियम की गोद में ईसा। कहते हैं अल्लाह ने मुझे किताब दे दी। भाई किताब दे दी तो पढ़ के सुनाओ, सुनाई नहीं। दुनिया का कोई ईसाई ये नहीं कहता कि दावा तो किया कि किताब अल्लाह ने दे दी, लेकिन किताब का एक जुमला भी सुनाया हो कहीं नहीं मिलता। और अभी किताब खुदा नाजिल नहीं हुई और मोहम्मद की गोद में किताब खुदा पढ़ रहा है। ये है शख्सियत मेरे अली की। और क्या अर्ज करूं, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। और अब बहुत तेजी के साथ मैं मसाइब की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन जब यहां तक बात आ गई तो ये जुमला सुनते जाओ भाई। ये क्या फजीलत है, ये वो है जो इत्तेबाए रसूल में कामिल है। इत्तेबाए रसूल में कामिल है, और जो इत्तेबाए रसूल में कामिल हो वो रसूल के बाद हिदायत का हक को जान ले। ये रिजल्ट है पूरे एक घंटे की तकरीर का। अब ये इत्तेबाए रसूल का कामिल इंसान आया था निजाम अदल को कायम करने के लिए। कुरान का निजाम अदल ये एक सब्जेक्ट है जिस पर मैं बहुत देर तक आपसे गुफ्तगू कर सकता हूं। बस एक जुमला कहूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। निजामे अदल कायम करने आया था, जभी तो इतने फजाइल हैं, जभी तो ऐसी शख्सियत थी। क्यों आया? निजामे अदल कायम करने। अली की खिलाफत का जमाना है। छोटा सा वाकया सुनो, मुझे इजाजत दे दो। अली की खिलाफत का जमाना है, एक शख्स ने चोरी की और इत्तेफाक वक्त यह कि वो अली का चाहने वाला था। हो जाती है, चाहने वालों से भी गलत तो हो जाती है ना। अली के सामने पेश किया गया, गवाहियां गुजरी, चोरी साबित हो गई। जलाल को हुक्म दिया हाथ काट दो, हाथ कट गया। उसको उंगलियां दी, उंगलियां कटी थी, उंगलियां दी और बैंडेज कर दिया गया। वो उंगलियां लेके चला। जब वो कूफे की गलियों से गुजर रहा था तो अली की तारीफ करता हुआ गुजर रहा था। किताबों में यह वाक्य कौन कर रहा था तारीफ, जिसकी उंगलियां कटवाई थी अली ने, उंगलियां हाथ में तारीफ करता हुआ गुजर रहा। लोगों ने पूछा कि भाई अली ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया, तुम तारीफ कर रहे हो? कहा भाई इस बात की तारीफ कर रहा हूं कि अली वो अकेला है जिसने कुरान के निजामे अदल को नाफिज किया। यहां तक तो सुन लिया ना तुमने, अब तुम्हारे काम की एक बात कहूं और मसाइब की तरफ चला जाऊं। अली वो अकेला इंसान है जिसने कुरान के निजामे अदल को नाफिज किया और राइज किया। ये खबर अली तक आ गई, हसन से कहने लगे जरा मेरे दोस्त को बुला के तो लाओ, अभी उस पर हज जारी की है, चाहने वाला है ना अली का, हज जारी की। हसन से कहा हसन जाओ मेरे दोस्त को बुला के लाओ। वो आया, उसे बिठाया, दो रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा उंगलियां दे, उंगलियां दे। उसने उंगलियां दी, जोड़ दी, उसने उंगलियां दी, आपने जोड़ दी और हमेशा के लिए जुड़ गई। तो अब आज समझ में आया कि अगर अली के चाहने वाले से कोई गलती हो जाए तो सजा वक्ती होती है, जजा दायमी होती है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर रुक गई, वो मकाम हिदायत पे है, वो मनसब इमामत पे फायज है। जब रखा गया था ना इफ्तार के वक्त दूध और नमक, बस सदाएं बुलंद हो, उस वक्त भी अली हिदायत से गाफिल नहीं थे, इमाम वो जो हर वक्त हाजिर हो। कहा बेटी तूने नहीं देखा होगा कि मैंने एक वक्त में दो सालन इस्तेमाल किए हूं, ठीक है ना? कहा कि बाबा ये दोनों चीजें अगर आप इस्तेमाल कर लें तो हर्ज क्या है? तो कहने लगे या बुनैया तो इन्न दुनिया व इन्न फी हलाल हा हिसाब व फी हराम हा इखाब। बेटी तू तो ये जानती है ना कि दुनिया में अगर हलाल इस्तेमाल करें तो उसका हिसाब होगा, अगर हराम इस्तेमाल करें उसका अजाब होगा। तो तेरा बाप ये पसंद नहीं करता कि देर तक मौके के हिसाब में खड़ा हो। मगरिब ऐशा की नमाज पढ़ी, इफ्तार किया, फिर मुसल्ले पे बैठे बैठे सूरह यासीन की तिलावत की और उसके बाद लेट कर थोड़ी देर के लिए आराम फरमाने लगे। शहजादी उम्मे कुलसूम बयान करती हैं कि कुछ देर के बाद बाबा उठे, देखो भाई ये जो रमजान था ना 47 हिजरी का, जिसकी 19वीं को जरबत लगी है अमीरुल मोमिनीन के सरे बहर पर, यह रमजान जाड़े में आया था, शदीद जाड़ा था। मैं अपनी तहकीक के मुताबिक रस कर रहा हूं। अली उठे, शहजादी बयान करती कि बाबा उठे, उठने के बाद इतना पसीना था उनके माथे पर कि अपने आबा के दामन से उस पसीने को पोंछा और सिर्फ इतना कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात गुजरती रही, कल मैंने वाकया बयान किया, बाहर निकलते थे सितारों को देखते थे फिर वापस जाते थे। फिर बेटी को तीन पहर की रात थी, दो पहर गुजर चुकी थी, आखिरी पहर बाकी था। शहजादी बयान फरमाती हैं कि आखिरी पहर में चले, तजदीद वुजू फरमाई, बाहर चले। बाहर चले तो दो वाक़े हुए। पहला तो वाक़या ये हुआ कि जंजीर दर आबा से उलझ गई, बे इख्तियार इशारा फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंजीर दर छोड़ा रहे थे कि वो पली हुई मुरादियां आ गई और आपके अबा के दामन को अपनी मिनखारों में दबा लिया और कुछ कहने लगी। घूर के देखा मुरादियों को और कहने लगे सवाय हो तत्बाउहा नवाए, अभी तो ये मुरगाबियां रो रही हैं, कुछ देर के बाद ज़ैनब रोएगी। वो बिल्कुल ये कह के बाहर निकले, मस्जिद में आए, मुस्तहबात अदा किए, तहिये मस्जिद पढ़ा, फिर कुछ और मुस्तहब नमाजें पढ़ी, उसके बाद गुलदस्ते अजान पे खड़े होके अजान दी। अली ये 19 रमजान की सुबह का वाकया है। जब अजान दे दी तो इब्ने मुल्जिम सीने के बल लेटा हुआ था, करीब आए और कहने लगे अकीम सलात इन सलात तन्हा अनिल फशाए वल मुकर, उठ नमाज पढ़, नमाज बुराइयों से रोकती है। सुन लिया तुमने, आराम से सुन लिया, उठाया है नमाज के लिए। अब मैं मसाइब की तरफ जाऊंगा, मैं तो ये वाक़े इसलिए बयान कर रहा था कि नौजवान नस्लों के जहन के अंदर ये वाक़यात महफूज हो जाए। नमाज शुरू की, पहली रकत का दूसरा सजदा था, उठता हुआ सर गिरती हुई तलवार, ताकत देखो, उठता हुआ सर गिरती हुई तलवार। तबीब बयान करता है कि फकत कासे सर नहीं कटा, मगज भी कट गया था। तुम रो चुके और मैं तवील मसायब बयान नहीं किया करता, लेकिन वाकयात हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा सा सुनते चलो। ये वो वक्त था जब जिब्रील ने आवाज़ दी वल्लाह लकद तहद्दमत अरकानुल हुदा, हिदायत के अरकान आज मुनहदिम हो गए, सुतून मजीद टकराए, चिराग गुल हो गए, से आंधियां चलने लगी। हसन इब्न अली को हुक्म दिया, बेटे नमाज की इमामत करो। मैं मसाइब पढ़ रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं, जैसे रसूल ने अली के लिए गदीर बनाई थी, वैसे अली ने हसन के लिए गदीर बनाई। अली बैठे बैठे हसन की इमामत में नमाज पढ़ते रहे, नमाज तमाम। जब नमाज तमाम हुई ना, तो एक मरतबा अली की जबान मुबारक से ये जुमला निकला, वल्लाह फुस्तु बरब्बिल काबा, खुदा की कसम रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद अपना सर सजदे में रखा और कहने लगे परवरदिगार, जब क़यामत का दिन हो और तेरे सामने मलाके मुकर्रबीन की सफ़े खड़ी हों, अम्बिया मुरसलीन सब बस्ता खड़े हुए हों, तो मालिक तू गवाह रहना कि अली ने तेरी इबादत में कोई कोताही नहीं की। तकरीर खत्म हो गई, तकरीर तमाम हो गई, अली ने तेरी इबादत में कोई कोताही नहीं की। फिर सर उठाया सजदे से, एक मरतबा उभरते हुए सूरज की तरफ निगाह की, सुबह आ चुकी थी और कहने लगे सुबह गवाह रहना, सुबह गवाह रहना कि तूने कभी अली के जागने का इंतजार नहीं किया, अली ने तेरे निकलने का इंतजार किया। ये कहकर मस्जिद की मिट्टी उठाई, अपने जख्म पे डाली और आयत पढ़ी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यही जमीन है कि हमने तुम्हें इसे खल्क किया है, इसमें तुम्हें फिर लौटा देंगे और फिर क़यामत के दिन तुम्हें इसी जमीन से उठाएंगे। ये कह के अली गुनूदगी में चले गए। ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, तुम रो चुके। हसन इब्ने अली आगे बढ़े, बाप का सर अपने जानों पर रख लिया, علی غنودگی کے عالم میں ہیں. ایک مرتبہ اب بیٹا ہے نا, بیٹے کے زانوں پر باپ کا سر ہے, آنسو ٹپکے علی کے چہرے پہ گرے. علی نے آنکھیں کھولی, کہا بیٹا حسن صبر کرو, حسن صبر کرو, یہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں, یہ تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہیں, ابراہیم کھڑے ہیں, اسماعیل کھڑے ہیں, یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا؟ تم نے گریا کیا, مجلس تمام ہو گئی. علامہ دربندی ایک مشہور مقتل نگار ہے, انہوں نے اپنے مقتل میں ایک واقعہ لکھا, کہنے لگے یہ جملہ, یہ جملہ فقط دو مرتبہ آل محمد کی زبان سے نکلا. جب علی زخمی تھے اور سر حسن کے زانوں پہ تھا, اس وقت علی نے کہا بیٹا صبر کرو, محمد کھڑے ہیں, تمہاری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہیں, کیا کہیں گے علی کا بیٹا صبر نہیں کر سکا؟ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب حسین ابن علی نے زانو رکھ کر اکبر کے کلیجے سے برسی کھینچی, اکبر تڑپنے لگے.